नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। ईरान ने परमाणु संयंत्रों पर हमलों के प्रतिशोध में इसराइल के दिमुना और नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र के आसपास मिसाइलें दागी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे के भीतर होर्मुज जल डमरू मध्य नहीं खोलने पर ईरान के बिजली संयंत्रों पर बड़ा हमला करने की धमकी दी। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों और निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना में संशोधन किए। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी, केरलम और असम में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी की। और स्क्वैश में इंडियन ओपन के फाइनल में वीर चोटरानी और अभय सिंह के बीच मुकाबला आज मुंबई में होगा। अब समाचार विस्तार से। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल के दिमुना और नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र के आसपास मिसाइलें दागी गई हैं। बताया जा रहा है कि ये हमले ईरान के बुशहर और नतांज स्थित परमाणु संयंत्रों पर अमेरिका इसराइल के हमलों के प्रतिशोध में किए गए। हालांकि इसराइली अधिकारियों ने परमाणु संबंधी स्थलों पर किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है। अब इस संघर्ष में परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान ने इसराइल के परमाणु संयंत्रों के आसपास के क्षेत्रों को निशाना बनाया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अरात की महापौर यायार मायान के साथ बातचीत की। उन्होंने दिमुना और नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास ईरान के हमले में घायल हुए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इसराइल के विदेश मंत्रालय के अनुसार इस हमले में बच्चों सहित 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उधर महापौर यायार मायान ने जानकारी दी कि प्रभावित इलाके से लगभग 150 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात में रास अल खैमा के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वायु रक्षा प्रणालियों ने आने वाले खतरों को निष्क्रिय कर दिया है। अधिकारियों ने कहा कि निवासियों से आग्रह किया गया है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें और सोशल मीडिया पर अपुष्ट वीडियो या अफवाहें साझा न करें। ये अवरोधन ऐसे समय में हुए हैं जब पिछले कुछ दिनों में ईरान द्वारा संयुक्त अरब अमीरात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहा है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने पहले रास अल खैमा पर हमले की धमकी दी थी और निवासियों को तुरंत क्षेत्र खाली करने को कहा था। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शो।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर तेहरान 48 घंटों के भीतर होर्मुज जल डमरू मध्य को नहीं खोलता है तो वो ईरान के बिजली संयंत्रों पर बड़ा विनाशकारी हमला करेगा और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर यह अल्टीमेटम जारी किया जिसमें उन्होंने ईरान को महत्वपूर्ण जल मार्ग खोलने के लिए ठीक 48 घंटे का समय दिया है। ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान के विभिन्न बिजली संयंत्रों को निशाना बनाएगा जिसकी शुरूआत सबसे बड़े संयंत्र पर हमले से होगी। उधर इजरायली रक्षा बलों ने कहा है कि ईरान ने अमरीकी इजरायली संयुक्त ऑपरेशन रोरिंग लॉयन आरंभ होने के बाद पहली बार लगभग 4000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम लंबी दूरी की मिसाइल दागी है। इसराइल ने कहा कि ईरान वैश्विक खतरा उत्पन्न कर रहा है क्योंकि उसकी मिसाइलें अब लंदन, पेरिस या बर्लिन तक पहुंच सकती हैं। इसराइल ने दावा किया कि ईरान ने क्षेत्र के 12 देशों पर हमले किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने खाड़ी क्षेत्र के महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रतिष्ठानों सहित ढांचागत केंद्रों पर हुए हमलों की निंदा की। श्री मोदी ने कहा कि ये हमले क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करते हैं। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि की कामना की। श्रीलंका की सरकारी कंपनी सीलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बड़ी वृद्धि की है। कीमतों में 24 से 30 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की गई है। केरोसिन तेल के दाम 60 रुपए से बढ़कर 255 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। कीमतों में वृद्धि के लिए पश्चिम एशिया संघर्ष और वैश्विक तेल की बढ़ती कीमतों में उछाल को वजह बताया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद से दूसरी बार ये बढ़ोतरी हुई है। प्रमुख ईंधन श्रेणियों में कुल वृद्धि लगभग 35% हो गई है, जो श्रीलंका की आयात निर्भर अर्थव्यवस्था पर वैश्विक ऊर्जा बाजार के प्रभाव को दर्शाती है। सरकार ने राज्यों को व्यावसायिक एलपीजी के 20% अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दे दी है। इससे कुल आवंटन 50% हो जाएगा। इसमें पीएनजी के विस्तार के लिए सुधारों के आधार पर 10% आवंटन भी शामिल है। इसमें रेस्तरां, ढाबे, होटल, औद्योगिक कैंटीन, डेयरी, रियायती कैंटीन और राज्य या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित अन्य क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि ये आवंटन सोमवार से लागू होगा। सभी व्यावसायिक और औद्योगिक एलपीजी उपभोक्ताओं को तेल विपणन कंपनियों के साथ पंजीकरण कराना होगा। सरकार ने आश्वासन दिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कोई कमी नहीं है और लोग घबराहट में खरीदारी ना करें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने बजट 2025-26 के अनुरूप सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना में बड़े बदलाव किए हैं। एक रिपोर्ट।
पारस्परिक ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों मशीनरी या उपकरण खरीदने के लिए 100 करोड़ तक के सावधि ऋण पर 60% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाता है। संशोधित योजना में चौथे वर्ष के बाद किश्तों में 5% अग्रिम अंशदान वापसी की जा सकती है। संतोषजनक ऋण प्रदर्शन पर चौथे वर्ष से हर वर्ष इसका 1% वापस किया जा सकेगा। पात्रता मानदंड को विस्तारित कर सेवा क्षेत्र के एमएसएमई को भी में शामिल किया गया है। मशीनरी और उपकरणों के लिए न्यूनतम परियोजना लागत की आवश्यकता पहले के 75% से घटाकर 60% कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार एमएसएमई के पारस्परिक ऋण गारंटी योजना संशोधनों से निर्यातक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए संयंत्र, मशीनरी और उपकरण की खरीद के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे भारत में विनिर्माण और निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
भारतीय जनता पार्टी ने असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूचियां जारी की हैं। असम में सुश्री कृष्णा साहा दलगांव और जीवन गोगोई सिसबिर गांव सीट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने केरलम के लिए 11 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। केरलम की 140 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 9 अप्रैल को होगा, मतगणना 4 मई को होगी। पुदुचेरी में भाजपा ने आवंटित 10 सीटों में से 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। पुदुचेरी चुनाव के लिए अब तक कुल 135 नामांकन दाखिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री एन रंगासामी, मंत्री और विपक्षी नेता आर शिवा सहित कई प्रमुख नेताओं ने अपने नामांकन किए हैं। भारत विद्युत शिखर सम्मेलन के तीसरे दिन कल नई दिल्ली में भारत अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी बैठक आयोजित की गई। विद्युत मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में ठोस परिणामकारी साझेदारी द्वारा भारत अफ्रीका सहयोग मजबूत करने पर सहमति बनी। विद्युत मंत्री ने वैश्विक ऊर्जा संपर्क के परिवर्तनकारी उपाय के तौर पर एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड की परिकल्पना का उल्लेख किया। बिहार आज अपना 114वां स्थापना दिवस मना रहा है। वर्ष 1912 में आज ही के दिन बिहार बंगाल से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बना था। बिहार दिवस के उपलक्ष्य में पटना के गांधी मैदान में 3 दिन तक चलने वाला राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान देश भर के कई प्रख्यात कलाकार प्रस्तुति देंगे। इस वर्ष दिवस का विषय है उन्नत बिहार, उज्ज्वल बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर बिहार के लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बिहार ने भारत के इतिहास और विरासत को हमेशा ही समृद्ध किया और राज्य लगातार देश के विकास में नए अध्याय लिख रहा है। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने प्रसाद योजना के अंतर्गत श्रीकाकुलम जिले के अरसावल्ली श्री सूर्य नारायण स्वामी मंदिर के विकास के लिए व्यापक योजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं में सुधार करना है। श्री नायडू ने कल इंद्र पुष्करणी मंदिर के सरोवर के आधुनिकीकरण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि तालाब के निर्माण कार्य के लिए 4 करोड़ रूपये पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। मौसम विभाग ने आज उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है। बीते दो दिनों से निचले इलाकों में बारिश जारी है। कुछ पर्यटकों के इलाकों में फंसने की भी खबरें हैं। इंडियन ओपन स्क्वैश टूर कॉपर टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबलों में आज मुंबई में पुरुष सिंगल्स में भारत के वीर चोटरानी का सामना हमवतन अभय सिंह से होगा। महिला वर्ग में अनाहत सिंह का मुकाबला मिश्र की हाना मोहताज से होगा। वीर चोटरानी ने मलेशिया के संजय जीवा को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अभय सिंह ने मलेशिया के खिलाड़ी को हराया था। अनाहत सिंह ने सेमीफाइनल में तन्वी खन्ना को 3-1 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
धन्यवाद जागृति। पश्चिमी एशिया संघर्ष में नया घटनाक्रम आज कई अखबारों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है, ईरानी हमले के बाद अमरीका का परमाणु केंद्र पर प्रचंड प्रहार, F-16 लड़ाकू विमान को निशाना बनाने का दावा। लोकसत्य ने ईद पर ईरान के नतांज परमाणु केंद्र पर हमले को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, 60 साल बाद इसराइल के यरूशलम में अल अक्सा मस्जिद ईद में बंद, ईरान में बाजार सुने। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी की ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ बातचीत और बुनियादी ढांचे पर हमले को लेकर चिंता को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी लिखता है, ईरान का डियागो गार्सिया में अमरीकी बेस पर हमला। पत्र लिखता है, ईरान का हमला रणनीतिक संदेश, उसके पास 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें अभी भी हैं मौजूद। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, ईरान के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा, बातचीत के लिए हम तैयार, बोले ब्रिक्स की हो भूमिका पश्चिम एशिया का बने नेटवर्क। अमेरिका ने ईरानी तेल पर 30 दिन के लिए हटाई बिक्री पाबंदी, लिखता है अमर उजाला। ईरान ने कहा, उसके पास न तो समुद्र में कच्चा तेल न ही अतिरिक्त भंडार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ में शीर्षक दिया है, अमेरिकी राष्ट्रपति की मनमानी। पत्र लिखता है, ट्रंप को एक ऐसे शासनाध्यक्ष के रूप में देखा जा रहा है जिसने अपने अहंकार के चलते विश्व को संकट की ओर धकेल दिया। दैनिक भास्कर ने विश्व जल दिवस को प्रमुखता दी है, ब्लू गोल्ड पानी बचाना निवेश करने जैसा है, आओ बचाओ, आज बचाओ कल फायदा होगा, पानी फ्री रिसोर्स से महंगा एसेट बन रहा। राजस्थान पत्रिका ने मौन महामारी शीर्षक से परिवारों की नई चिंता दी है, खो रही महिला पुरुषों की सृजन शक्ति।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ईरान ने परमाणु संयंत्रों पर हमलों के प्रतिशोध में इसराइल के दिमोना और नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र के आसपास मिसाइलें दागी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे के भीतर होर्मोज जल डबरू मध्य नहीं खोलने पर ईरान के बिजली संयंत्रों पर बड़ा हमला करने की धमकी दी। सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों और निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना में संशोधन किए। और स्क्वैश में इंडियन ओपन के फाइनल में वीर चोटरानी और अभय सिंह के बीच मुकाबला आज मुंबई में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।